नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करेंगी। वे ऊर्जा संरक्षण संबंधी राष्ट्रीय चित्रकारी प्रतियोगिता के विजेताओं को भी पुरस्कृत करेंगी। ये आयोजन राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर हो रहा है। राष्ट्रपति मुर्मू इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 2 दिन की यात्रा पर जॉर्डन जा रहे हैं। उनकी ये यात्रा जॉर्डन नरेश अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और जॉर्डन के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। भारत जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। दोनों देशों के बीच लगभग 2 अरब 80 करोड़ डॉलर का व्यापार होता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नक्सलवाद से किसी को लाभ नहीं होता और केवल शांति ही विकास का प्रशस्त कर सकती है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में उन्होंने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ के बस्तर मंडल को देश का सर्वाधिक विकसित आदिवासी क्षेत्र बनाने का संकल्प लिया है।
बस्तर के हर व्यक्ति को रहने के लिए घर, घर में बिजली, शौचालय, पीने का पानी, नल से गैस का सिलेंडर, 5 किलो अनाज और 5 लाख तक का मुफ्त इलाज बस्तर के 7 जिलों के घर घर में पहुंचाने का संकल्प ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प।
केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि डाकिये विश्वास का सेतु रहे हैं जो बैंकिंग, बीमा और सरकारी सेवाएं भी घर घर तक पहुंचाते हैं। डाकियों ने ग्रामीण भारत को जोड़ने और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री सिंधिया ने ये बात कल महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गोवा और पुणे के लगभग 6,000 ग्रामीण डाक सेवकों से कही। श्री सिंधिया ने कहा कि 1,65,000 से अधिक डाकघर लगभग 6.5 लाख गांवों को सेवा दे रहे हैं। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि हस्तशिल्प उद्योग लगभग 50,000 करोड़ रुपए का निर्यात करता है और जल्द ही इसके 1,00,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। श्री सिंह ने कहा कि आज के युवा पारंपरिक शिल्प को समझते हैं और ऐसे समकालीन उत्पाद तैयार कर रहे हैं जो वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने हब एंड स्कोप मॉडल के अंतर्गत 100 कारीगरों के साथ साझेदारी की है ताकि हस्तशिल्प उत्पादों का विश्व भर में निर्यात किया जा सके। दिल्ली में स्कूलों को 9वीं और 11वीं की कक्षाएं हाइब्रिड मोड में संचालित करने को कहा गया है। 10वीं और 12वीं की कक्षाएं स्कूलों में ही जारी रहेंगी। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में हवा की बिगड़ती गुणवत्ता को देखते हुए यह निर्णय लिया। दिल्ली समेत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रेप के 4थे चरण को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने शहर के सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को भी अपने कम से कम 50% कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा है। पंजाब में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के लिए आज सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो रहा है। इस चुनाव में 9,000 से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें सत्ताधारी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शामिल हैं। मतदान बैलेट पेपर से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना 17 दिसम्बर को होगी। गोवा में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट श्रेणी के लगभग 1,00,000 मतदाताओं के गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए हैं, जबकि 1,82,000 मतदाताओं की जानकारी डेटाबेस में नहीं मिली है। ऐसे सभी मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे जिसमें उन्हें 13 निर्धारित दस्तावेजों में से किसी एक के साथ सुनवाई के लिए उपस्थित होना होगा। सीरिया में इस्लामिक स्टेट आईएस के हमले में 2 अमरीकी सैनिक और 1 अमरीकी दुभाषी की मृत्यु हो गई और 3 सैनिक घायल हुए हैं। अमरीकी केंद्रीय कमान के अनुसार हमलावर को मार गिराया गया है। किसी भी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अमरीका और सीरिया पर आईएसआईएस का हमला बताया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा T20 मैच आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर है। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम बृहस्पतिवार को हार के बाद श्रृंखला में वापसी करने की कोशिश करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।